राधिका, बस बहुत हुआ, बिल्कुल चुप हो जाइए, खबरदार हो, आंखों से एक आंसू भी गिराया। माधव ने प्यार से उसे डांटा तो राधिका चुप हो गई, पर रोते रोते उसकी सिसकियां बंद गई थीं। माधव ने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी हथेलियों से पोंछा, उसे बेड पर बिठाकर पानी पिलाया। राधिका कुछ शांत हुई तो माधव ने बेहद प्यार व नर्म लहजे में सवाल किया, क्या हुआ था राधिका, आप अचानक रोने क्यों लगी थीं? राधिका जो सर झुकाए बैठी थी वो निगाहें उठाकर नम माथे से उसे देखने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी मोहब्बत करेगा मुझसे, किसी की नज़रों में इतनी खास बन जाऊंगी मैं, किसी की जिंदगी में इतनी अहमियत होगी मेरी, और किसी को मेरे आंसुओं और दर्द से इतना फर्क पड़ेगा। पति का जो रूप मैंने देखा उसके बाद आपकी ये बातें सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं सकी और श्श। माधव ने उसके कांपते होठों को अपने अंगूठे से खामोश कर दिया। राधिका, मैंने कहा था ना आपसे कि हमारे आज और आने वाले कल में बीते कल का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं, लबों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके दर्द की नहीं सुकून की वजह बनना चाहता हूँ। जो भी था उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए और बस इतना याद रखिए कि आज हम एक साथ हैं और जो भी आपको मिल रहा है उस पर हमेशा से आपका ही हक था। बस मुझे आप तक पहुँचने में थोड़ी देर लग गई, पर अब मैं कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, बस आप खुश रहिए, यही चाहत है मेरी। माधव ने बेहद नरमी से उसे समझाया, प्यार से उसके आंसुओं को पोंछा और उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाने लगा। बस अब रोना बंद कीजिए, देखिए तो रो रो कर आंखें कैसे लाल कर ली हैं आपने। अगर किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो क्या कहेंगे कि एक दिन हुआ नहीं शादी को और बीवी को रुला रुला कर उसके चेहरे से नई दुल्हन वाला नूर ही खत्म कर दिया है। राधिका की आंखों में अब भी नमी बाकी थी और वो खामोश सी बस उसे देखे जा रही थी। पल भर ठहरते हुए माधव ने प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, आज आप बेहद हसीन लग रही हैं, पर एक कमी है जो मुझे बहुत खल रही है। माधव ने जरा मायूसी जाहिर की। राधिका के चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव उभर आए। क्या? बाकी सब तो ठीक है, पर अगर आपके चेहरे पर इस मायूसी की जगह लगों पर मुस्कान होती तो बात ही कुछ और होती। माधव ने उसके होठों के किनारों को अपनी उंगलियों से फैलाया और राधिका के लब बेसाख्ता ही मुस्कुरा उठे। बस यही मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ मैं आपके लबों पर, हर पल हर लम्हा ताउम्र। माधव ने मुस्कुराकर राधिका के माथे को चूम लिया। राधिका भी बेझिझक उसकी पनाहों में सिमट गई। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया, फिर राधिका ने माधव से अलग होते हुए निगाहें उसकी ओर उठाई। आप चाय पियेंगे? मैं बना कर ला दूं। अगर आप इतने प्यार से पूछेंगी तो जरूर पियेंगे। माधव ने प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए उसके गाल पर अटखेलियां दिखाती लटों को अपनी उंगली से सहलाया। राधिका कसमसाते हुए खुद में सिमट गई और माधव उसे यूं मचलते देखकर हंस पड़ा। राधिका ने झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए नाक से कोड़ी और माधव से दूर हट गई। माधव अब भी उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था, जिसे राधिका चिढ़ गई। अब क्या सारा दिन यहाँ खड़े बत्ती से ही चमकाते रहेंगे? चलिए चलकर मुझे किचन में सामान दिखा दीजिए। राधिका ने पूरे हक से उसकी हथेली थाम ली। चलता हूँ, पर पहले जरा हाथ तो छोड़िए, कपड़े पहन लूँ या ऐसे ही लेकर चलेंगी मुझे? माधव ने पहले राधिका के हाथ में मौजूद अपनी बाह को देखा, फिर शरारत से मुस्कुराते हुए इशारा अपनी ओर किया। राधिका का ध्यान अब जाकर माधव पर गया, सिर्फ लोअर में वो उसके सामने खड़ा था। राधिका ने सकपकाते हुए उसके हाथ को छोड़ दिया और हड़बड़ी में उसकी ओर से निगाहें फेरकर खड़ी हो गई। माधव उसकी हड़बड़ी देखकर मुस्कुरा दिया और अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए उस पर तंज कस दिया। राधिका, आप भी हद करती हैं, अभी तक शौक से मेरे सीने से लगी थी, बातें कर रही थी और अब यूं निगाहें फेरकर खड़ी हो गई, जैसे बिना शर्ट के मुझे अभी से पहले देखा ही नहीं। राधिका माधव की बात सुनकर झीप सी गई, जीभ को दांतों तले दबाओ खुद को ही कोसा कि पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, फिर अपनी शर्म को गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगी। आप मुंह चलाना बंद कीजिए और शर्ट पहनने पर ध्यान लगाइए। लो, पहन ली मैंने शर्ट। माधव एकाएक मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। राधिका ने कनखियों से उसे देखा, फिर मुंह बनाते हुए उसके साइड से निकलने को हुई, पर माधव ने उसकी कलाई थाम ली। जाने से पहले ये तो बता दीजिए कि कैसा लग रहा हूँ मैं? राधिका ने चौंकते हुए उसे देखा और उसकी आंखों में छलकते सवाल को समझते हुए माधव ने अपनी दाढ़ी पर उंगली फिरा दी। उसका इशारा समझते हुए राधिका ने ठोड़ी पर उंगली रखकर उसे कुछ पल ऊपर से नीचे तक गहरी निगाहों से देखते हुए यूं दिखाया जैसे गहरी सोच में डूबी किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिर राधिका ने अजीब सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ठीक ही लग रहे हैं। माधव ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए आंखें चढ़ाकर उसे घूरा। अब की बार राधिका उसके पास चली आई और उसके कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे को जरा नीचे झुका लिया। बहुत अच्छे लग रहे हैं, राधिका मुस्कुराई और अपनी एड़ी उचकाते हुए उसके गाल पर अपने लबों को टिका दिया। माधव पहले तो चौंक गया, फिर उसके लबों पर दिलकश मुस्कान बिखर गई।
शादी तो उनकी पहले भी हुई थी, पर इन लम्हों को अब दोनों ही खुलकर जी रहे थे। बेइंतहा मोहब्बत करते थे वे एक दूसरे से, और यही मोहब्बत इन आम से पलों को भी बेहद खास बना रहा था। कुछ ही मिनट बाद दोनों किचन में थे। माधव राधिका को सब चीजें निकाल कर दे रहा था, जब राधिका की परेशान सी आवाज उसके कानों से टकराई। माधव जी, आज मेरा इस घर में पहला ही दिन है, मैं ऐसे किचन में आ गई, मम्मी जी को इस बात का बुरा तो नहीं लगेगा ना? कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए कि आते ही मैंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। माधव उसकी बातें सुनकर उसकी ओर पलटा तो पाया कि राधिका माथे पर सिलवटें डाले परेशान निगाहों से विचलित सी उसे ही देख रही थी। कितनी जल्दी परेशान हो जाती हैं आप, ऐसा कुछ नहीं होगा, मम्मी बिल्कुल नाराज नहीं होंगी और ना ही उन्हें आपका किचन में आना बुरा लगेगा। इसे आप अपना ही घर समझिए और बिना किसी बात की चिंता फिक्र करे जैसे रहना चाहती हैं रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। माधव के समझाने पर राधिका कुछ नॉर्मल हुई। माधव ने प्यार से उसकी गाल को चूमा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राधिका ने अपनी साड़ी के आंचल को अपनी कमर पर खोंस लिया और काम में लग गई। राधिका चाय चढ़ा रही थी जब अनुपमा जी रसोई में पहुंची। राधिका को पहले से वहां मौजूद देखकर वो हैरान रह गई। वहीं राधिका ने अपने सर को पल्लू से ढंका और आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। अनुपमा जी उसके संस्कार देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, खुले मन से उसे खूब आशीर्वाद दिए। बहू, घर के लोगों के सामने सर पर पल्ला रखने या घूंघट करने की जरूरत नहीं तुम्हें, बाहर का कोई आए बस तब सर पर आंचल रख लेना। अभी नई नई शादी हुई है, हम किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहते, तो बाहर वालों के आगे हमारे परिवार की इज्जत रख लेना, घर पर तो जैसे चाहे रह सकती हो। जी मम्मी जी, राधिका ने सहजता से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अनुपमा जी ने अब जरा हैरत से सवाल किया, बहू तुम इस वक्त रसोई में क्या कर रही हो? चाय बना रही थी मम्मी जी, उससे पहले मैंने खीर बना दी है, वो रस्म होती है ना पहली रसोई में कुछ मीठा बनाने की। राधिका की जुबान जरा लड़खड़ाई और जवाब देते हुए कुछ घबरा भी गई। अभी तो तुम्हारा पहला ही दिन था और अभी से रसोई का काम संभालने लगी। अनुपमा जी ने जरा ताज्जुब से उसे देखा। राधिका अब और ज्यादा नर्वस सी हो गई। वो मेरे रहते आप किचन में काम करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और अपने घर में भी मैं ही किचन की सारी जिम्मेदारी संभालती थी, तो मैंने सोचा कि जब कुछ दिन बात करना ही है तो आज से ही क्यों नहीं।
आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं बिना आपसे पूछे रसोई में आ गई? वो मैंने माधव जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि इस घर को अपना ही घर समझूं, और आप सो रही थी तो आपसे पूछ नहीं सकी। आगे से आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। अनुपमा जी समझ रही थी उसकी घबराहट की वजह, वो नर्म लहजे में उसे समझाने लगी। बहू, तुम्हें हमसे इतना घबराने की जरूरत नहीं, हम ये भी नहीं कहते तुम्हें कि सब काम हमसे पूछ कर ही करो। अब से ये तुम्हारा घर है, हमने आज तक इस घर परिवार को अपने हिसाब से संभाला, अब सब तुम्हें ही संभालना है। अभी तुम इस घर में नई हो, यहाँ के रीति रिवाज तौर तरीके नहीं जानती, थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें सब जानने समझने में, पर अब तुम इस घर की बहू हो और सब तुम्हें ही देखना है। हम तुम्हें समझाते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता तो बेझिझक हमसे पूछ सकती हो, पर ये जान लो कि अब इस घर परिवार को कैसे चलाना है ये तुम्हें ही देखना है। इस घर की जिम्मेदारियां हमने अब तुम्हें सौंप दी हैं। जी मम्मी जी, राधिका ने सर हिलाया, फिर पल भर ठहरते हुए बोली, मम्मी जी आप चाय लेंगी? हमारी बहू ने बनाई है तो जरूर लेंगी, पर उससे पहले खीर भगवान का भोग निकालकर हमें दे दीजिए, हम पूजा करने जा रहे हैं। जी अच्छा, राधिका ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अनुपमा जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। सालों पहले और अब वाली अनुपमा जी में बहुत बदलाव आ चुके थे। राधिका माधव की पसंद उसकी खुशी थी, जिसे उन्होंने खुले मन से अपनाया था, और राधिका भी अपने सरल सौम्य व्यवहार से उनके दिल में जगह बनाने लगी थी। कुछ देर में सभी जाग चुके थे, माधव भी नहा धोकर वहीं आ चुका था, और सब साथ ही चाय की चुस्कियां लेकर रात के रिसेप्शन पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। शादी में किसी को नहीं बुलाया था तो रिसेप्शन रखा था ताकि बाद में लोगों को कुछ बोलने का मौका न मिले। आज का नाश्ता राधिका ने ही बनाया था, जहां बाकी सब ने उसके खाने की तारीफ की वहीं कविता खींच कर रह गई। नाश्ते के बाद राधिका अपने साथ लाए गिफ्ट सबको दे रही थी, इसमें भी कहीं कोई कमी नहीं थी, पर कविता यहां भी चिढ़ गई। राधिका ने उसे साड़ी दी तो वो उसे उलट पुलट कर देखने लगी। साड़ी तो ठीक है, पर सुमन भाभी जब घर आई थी तो उन्होंने मुझे ये सोने के झुमके दिए थे, देखो आज भी कैसे नए जैसे चमक रहे हैं। इनके आगे आपकी दी ये साड़ी फीकी पड़ गई, पर ठीक है, सुमन भाभी इतने बड़े घर से आई थी, अपने औकात के हिसाब से आपने भी अच्छा ही गिफ्ट दिया है। कविता ने उसे ना सिर्फ सुमन से कंपेयर किया था, बल्कि उसके दिए गिफ्ट को कमतर बताते हुए उसके फैमिली बैकग्राउंड पर कमेंट किया था, उसे नीचा दिखाया था। राधिका तो उसका मुंह ही ताकती रह गई, जबकि शिखा तुनकते हुए बोल पड़ी, सुमन भाभी ने सोने के झुमके दिए तो आज भी उनका गुणगान कर रही हैं आप, पर ये भूल गईं कि उन्होंने कभी इतनी इज्जत नहीं दी आपको जितनी राधिका भाभी से मिल रही है, और जिन झुमकों पर इतना इतरा रही हैं उसके पैसे भैया ने डिवोर्स के वक्त उन्हें वापस किए थे। शिखा का यूं राधिका का साथ देना कविता को जरा भी पसंद न आया, वो गुस्से से उसे घूरने लगी, पर शिखा ने मुंह ऐंठ लिया और आकर राधिका से लिपट गई। भाभी, मेरा गिफ्ट? उसकी मासूम सी सूरत और मीठी सी मुस्कान देखकर राधिका बाकी सब भूल गई। बिल्कुल अर्पिता जैसी ही लगती थी वो उसे। अगर यहाँ अर्पिता होती तो वो भी ऐसा ही करती। राधिका की छोटी तीन बहनें थीं, पर उनमें से सबसे ज्यादा करीब अर्पिता ही थी। दोनों का रिश्ता ऐसा था कि अप्पू अपनी दीदी पर जान देती थी और उसके खिलाफ एक गलत शब्द बर्दाश्त ना करती थी, तो राधिका अप्पू की हर शरारत को सर आंखों पर रखती थी। शिखा से भी ऐसी ही बॉन्डिंग थी उसकी। राधिका ने मुस्कुराकर उसके गाल को छुआ और हाथ में मौजूद पैकेट उसे पकड़ा दिया। शिखा ने बड़ी ही उत्सुकता से गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें से एक खूबसूरत से ड्रेस निकला, जिसे देखते ही शिखा खुशी से चहकती हुई उसके गले से लग गई। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए, पर माधव और अनुपमा जी दोनों ही नाराजगी से कविता को देख रहे थे। टू बी कंटिन्यूड, क्या लगता है आपको, क्या ये जहरीली कविता कभी सुधरेगी? राधिका और माधव के लिए भी कुछ शब्द लिख दीजिएगा, बेचारे खुश हो जाएंगे।